अब इसके आगे एक स्थान है, उसका नाम है टेर कदम्ब। तो टेर कदम में, जैसे मैंने पहले आपको वहां पर नंद बैठक में बताया था, क्या बताया था, टेर कदम पे क्या होता है,
गाय को बुलाते हैं।
कदम्ब कदम्ब चढ़त कान बुलावत गाय, कदम्ब चढ़ कान बुलावत गाय, मतलब कदम के पेड़ के अग्र शिखर पर जाकर वो श्याम कुंड सुंदर जी बैठते हैं। रोज की लीला है, शाम को जब संध्या के समय इकट्ठा होते हैं तो हजारों गायें लाखों गायें इकट्ठा होती है, और वह उनको बुलाने के लिए कदम का एक पेड़ था उधर बहुत सुंदर, अभी तो छोटा सा पेड़ है, 29 साल पहले भी देखा, बहुत ऊंचा था वो पेड़, अभी अभी हमारे 30 साल पहले देखा था, तो ठाकुर जी के समय वो कितना विशाल होगा, उसके टॉप चोटी पर जाकर बैठते थे वो। और भगवान की जो मुरली है उसके अंदर 8 छेद हैं, और वो 8 छेद वो 8 स्वर निकालते हैं, वो हर एक स्वर का अलग अलग परिणाम होता है, समझो। पहला स्वर जब बजाते हैं ना तो आकाश के चांद और सितारे रुक जाते हैं, दे कैंट मूव फर्दर, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, यमुना जी रुकना बंद हो जाती है, और चांद और सूरज उल्टा चलने लगते हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा है इतना प्रभाव है उनका। और छठवा तो धुन है वो जब बजाते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं, वो छठवे धुन से गायें भी पागल हो जाती है, ऐसे बंसी की कथा है मुरली की। पांचवे धुन बजाते हैं तो सारी गोपियां पागल होकर भाग जाती हैं उनके पीछे, मुरली की आवाज के पीछे एकदम तूफान की तरह भागती है, सब सोचती नहीं क्या कौन, सासू ससुर बेटा हस्बैंड सब भूल जाते हैं, वो पांचवें दिन उनके लिए है, छठवें दिन गायों के लिए है। तो 8 प्रकार के परिणाम होते हैं उनके। तो उनका ऊपर जाकर छठवीं धुन बजाते हैं, तो जब वो छठी धुन बजाते हैं तो हर एक गोपी गाय को अपना नाम सुनाई पड़ता है, वो एक धुन बज रही है लेकिन किसी को ए तिलकनी ए धुमरी ए कारी ए कमरी ऐसा तो आवाज सुनाई पड़ता है, उसके उसके नाम सुनाई पड़ते हैं, तो वो नाम सुनती है जो गाय, उसको लगता है कि केवल मुझे पुकार रहे हैं, जैसे गोपियों को लग रहा है कि केवल मेरे साथ नाच रहे हैं, वैसे हर एक गाय को लगता है कि केवल मुझे पुकार रहे हैं, मोस्ट पर्सनल। और वो कैसे भाग के आती है, उसके दो कान ऊपर, उसके दो एक पूंछ ऊपर, आंख ऐसी बड़ी बड़ी करके ऐसे आ, फिर आंख भी ऐसे करना बंद कर देते हैं ऐसे गाय सब। हाँ, जैसे उनकी आंखें स्किन ऐसे डोलती रहती है और वो ऊपर देखते रहते हैं, सारी गाय भाग के आती है, लेकिन कुछ गाय बहुत चालू होती है, वो जानबूझकर सुनकर भी नहीं आती है, तो क्या करते हैं बड़े दयालु ठाकुर जी, सबको इकट्ठा करते हैं, खड़े करते हैं, उतर जाते हैं, वो जहां जहां भी है वहां पर उनको थपथपा कर सबको पर्सनल लेके आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन सीकिंग, उनको पर्सनल अटेंशन चाहिए, वो भी देते हैं सब लोगों को बड़े प्रेम से लेकर, फिर वो झुंड बनाते हैं, फिर मुरली बजाते हुए अपने घर चले जाते हैं। वो वहां की लीला है, टेर कदम्ब, टेर यानी बुलाना, तो टेर जहां पर ठाकुर जी टेर लगाते हैं और गायों को बुलाते हैं, बड़ा सुंदर रोज का आनंदमयी घटना है वो, और गायों के चरणों के द्वारा उठी हुई हूल धूल में स्नान करते हुए ठाकुर जी जो है अलंकृत होकर घर पहुंचते हैं, फिर नंद बैठक में उनका स्वागत होता है। तो उधर हमारे रूप गोस्वामी ठाकुर जी, रूप गोस्वामी जी ने वहाँ पर भजन किया था, रूप गोस्वामी वृंदावन में थे और उधर एक योग पीठ है वहाँ पर भजन करते थे, तो योग पीठ पर राधा गोविंद जी का आविर्भाव हुआ, तो राधा गोविंद जी का आविर्भाव होने के बाद में पेड़ के नीचे रहकर उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन उनके शिष्य आए, अकबर के सेनापति राजा मानसिंह उनके शिष्य थे वो, तो गुरु जी का दर्शन करने आए, बड़े धनवान थे बड़े भक्त थे वो, उन्होंने रूप गोस्वामी जी से कहा कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो वो कहते मैं तो साधु आदमी हूँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन गोविंद जी पेड़ के नीचे रहते हैं तो आप गोविंद जी के लिए एक भव्य मंदिर बना दो। तो राजा मानसिंह ने फिर वो 7 मंजिल का भव्य मंदिर बनाया, और जब वो मंदिर निर्माण अधीन था तब रूप गोस्वामी अपने शिष्य के साथ में वो विग्रहों की सेवा देकर टेर कदम में निवास करने आए एकांत भजन करने के लिए। और वहाँ पर जब वो भजन कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव और बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पर बैठ के लिखे। इतना रमणीक वातावरण है वहाँ पर, इतना सुंदर वातावरण है। उस एकांत में उन्होंने भजन किया, वहाँ पर ग्रंथों का लेखन किया। और मंदिर का जब निर्माण होने का समय आया, पूर्ण होने का, उसके पहले ही वो अंतर्धान हो गए। तो रूप गोस्वामी को वहाँ पर एक अद्भुत अनुभव आया। एक दिन सनातन गोस्वामी का जन्मदिन था, तो दोनों कुछ समय दोनों एक साथ थे, कुछ समय पावन सरोवर में सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है, वहाँ पर वो भजन करते थे और टेर कदम में ये रहते थे, ऐसा कुछ कॉमन समय था। तो बहुत सारा समय सनातन गोस्वामी उधर चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में रहते थे, अधिकतर समय उन्होंने वहाँ बिताया, उनका अंतिम काल वहाँ पर हुआ है। बीच में कुछ समय यहाँ पर भजन किया उन्होंने पावन सरोवर में। दोनों के मंदिर बन रहे थे, सनातन जी का, मदन मोहन जी का मंदिर बन रहा था, जो हमने देखा ना कल, वो वृंदावन में था ना, पहाड़ के ऊपर, कालिया घाट के ऊपर, वो एक मंदिर बन रहा था सनातन गोस्वामी का, और रूप गोस्वामी का बन रहा था उधर गोविंद जी का। तो दोनों भ्रमंती में थे उस समय। तो उस दिन सनातन गोस्वामी का जन्मदिन था, उस दिन रूप गोस्वामी के मन में विचार आया कि बड़े भाई है, गुरु समान है, उनका कुछ जन्मदिन के लिए कुछ होना चाहिए, तो कुछ खीर बनेगी तो बढ़िया हो जाएगा। तो सोचने लगे भाई चावल कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा, मेवा कहाँ से आएगा, सोचने लगे। तो सोचे अरे तो मैं तो साधु हूँ, मैं तो क्यों उस प्रपंच में पढ़ूंगा, कोई बात छोड़ो उसको, बैठने बैठ गए लिखने के लिए। उतने में एक कन्या आई वहाँ पर, छोटी सी कन्या, हाँ लहंगा फहरिया पहनकर, बहुत सुंदर सी कन्या आई, सर पे बहुत बड़ा टोकरी थी उसकी, और आई, महाराज जी महाराज जी, ये मेरे मैया ने भेजा है। बोले क्या है इसका बेटा, इसके अंदर चावल है, इसके अंदर अभी अभी निकाला हुआ दूध है, इसके अंदर सब मेवा है, इसके अंदर सब सामग्री है, खीर बन सकती है बढ़िया से बहुत। तो वो कहते हैं बना देना, मैं ज़रा व्यस्त हूँ। तो वो रसोई में लग गई, उसने पूरी खीर बना दी चावल की, और फिर भोग लगाया भगवान को। बोले महाराज जी खीर तैयार हो गई है, आप ले सकते हो। उसी समय पर जब वो बनाकर जाती है, उसी समय पर सनातन गोस्वामी आ गया वहाँ पर। तो उसे भैया आपका जन्मदिन है, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरी शुभकामना स्वीकार कीजिए, और मैंने खीर बनाई है उसको आप स्वीकार कीजिए। तो सनातन गोस्वामी उस खीर को खाना आरंभ करते हैं, और जैसे ही खाते हैं तो उनके शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, एकदम आंखों से अश्रु बहते हैं, दिव्य अनुभव प्राप्त होता है, शरीर कांपने लगता है उनका। तो पूछते हे रूप, तुमने ये खीर कहाँ से लाई? तो उन्होंने बताया एक लड़की आई थी, उसने बनवा दिया। बोले कैसी लड़की थी बताओ, उसका वर्णन करो। तो उस लड़के का वर्णन करते हैं, बोलते अरे तुम तो जानते नहीं, वो स्वयं राधा रानी थी, वो राधा रानी ने स्वयं आकर तुम्हारे लिए खीर बनाई है, तुम कैसे भागते हो, राधा रानी कहाँ से सेवा लेते हो, हम लोग तो राधा रानी की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और तुमने राधा रानी को सेवा में लगा दिया, कैसे भागते हो तुम लोग। ऐसे वो रूप गोस्वामी को डांट रहे हैं, लेकिन खीर खाना बंद नहीं कर रहे हैं, खीर खा ही रहे हैं। उनको पता ही नहीं कैसे, मतलब उनकी इंद्रिय जो है वो काबू में नहीं है, वो खा रहे हैं और रूप गोस्वामी खाते जा, दोनों रो रहे हैं। एक को पछतावा हो रहा है, अरे मेरे राधा रानी को सेवा में लगाया, एक बोल रहे हैं क्यों सेवा में लगाया, तुम तो उसके सेवक हो वगैरह। ये सब चल रहा है वाद विवाद चर्चा, लेकिन दोनों के हाथ से खीर खाना बंद नहीं हो रहा है। ऐसी दिव्य खीर थी, क्योंकि उनको कोई ऐसे अद्भुत खीर खाने का आनंद प्राप्त हुआ उसमें से। बोले कहाँ से चावल आए, कहाँ से दूध आया है, ये तो यहाँ का हो ही नहीं सकता। तो राधा रानी ने स्वयं रूप गोस्वामी को दर्शन दिया उस जगह पर। उधर राधा कुंड में सनातन गोस्वामी, अपना रघुनाथ दास गोस्वामी को भी दर्शन दिया कृष्ण भगवान ने और राधा रानी दोनों ने। वो सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो इतने विरक्त थे कि वो खुली जगह पर जप करने बैठते थे। तो बहुत एक दिन ऐसा था वातावरण, तो एक शेर आ गया उधर राधा कुंड में जल पीने के लिए, इतना घना जंगल था उस समय। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ से डंडा लेकर आए, और श्री कृष्ण भगवान ने शेर को भगा दिया। तो वहाँ से सनातन गोस्वामी आए, उन्होंने बहुत डांट लगाई उनको, कैसे भक्त हो तुम लोग, कृष्ण को सेवा में लगाते हो अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी कुटी बनाओ और अंदर बैठो भजन करो। फिर भी वो उनको अपनी कुटी वुटी बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर वैसे ही बैठ के भजन। एक दिन ऐसा कड़क गर्मी थी, इतनी कड़क गर्मी थी कि चमड़ी जल रही थी पूरी थी, लेकिन ये तो इतने मस्त बैठे हुए भजन में, इतना मग्न है राधा रानी के भजन में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो राधा रानी प्रकट होती है और अपना जो पल्लू है वो उसके ऊपर ऐसे, जैसे प्रभु जी देखो कितने प्रेम से खड़े, ऐसे अपना जो चुनरी है वो उठाकर ऐसे उसके सर पे पकड़ के, खुद धूप में खड़ी है और राधा रानी के कपाल भूमि पर पसीने के बिंदु आ रहे हैं और वो पसीने से तर हो गई है और वो उनको छाया देकर खड़ी है, और वहां से सनातन गोस्वामी देख रहे हैं उसको। तो फिर आके डांटते हैं उनको, राधा रानी से सेवा लेते हो। तब जाकर फिर उन्होंने अपनी कुटी बनाई छोटी सी और उसमें भजन करने लगे। ऐसे भजन भक्त थे रघुनाथ दास जी। तो राधा रानी ने रूप गोस्वामी को तेर कदम भूमि पर भजन किया, दर्शन दिया था। रोज कृष्ण बलराम आकर वहाँ पर लीला करते हैं, बहुत ही मधुर और बहुत ही एकांत और बहुत दिव्य स्थली है वो। तब लोग तो दर्शन कीजिए टेढ़ कदम का, फिर हम लोग पावन सरोवर जाएंगे उसके बाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।